आज विशेष दिन है, क्या दिन है? पहले कौन सा प्रकट हुआ, राधा कुंड या श्याम कुंड? पहले राधा कुंड प्रकट हुआ, पहले श्याम कुंड प्रकट हुआ, बाद में राधा कुंड प्रकट हुआ। लेकिन फिर भी कोई भी जाता है, कोई कहता मैं श्याम कुंड जा रहा हूं, क्या बोलते लोग? कहां जा रहे हो? राधा कुंड जा रहा हूं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये वृंदावन में लोग सब जब रजवैसी लोग है क्या बोलते रहते हैं? राधे राधे। कहे कोई श्याम का नाम लेता नहीं, डायरेक्ट सीधे कर राधे राधे, राधा कृपा हो गया तो हमें श्याम सुंदर की कृपा मिलेगी। तो आज विशेष दिन है, हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते कि गोवर्धन गिरौ रम्ये राधा कुंडं प्रियं हरे कार्तिके बहुलाष्टम्यं तत्र स्नात्वा हरे प्रिय। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गोवर्धन गिरी के तलहटी में राधा कुंड बड़े शोभा प्राप्त करता है, लेकिन ये शोभा के और इसका शोभा अधिक वृद्धि हो रहा है क्योंकि प्रियंग हरे, राधा कुंडंग प्रियंग हरे, ये राधा कुंड भगवान हरि को, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। कार्तिके बहुलाष्टम्यं तत्र स्नात्वा हरे प्रिय, ये कार्तिक महीना के कृष्णाष्टमी जिसको बहुलाष्टमी कहते हैं, इसी दिन में यदि कोई जाकर वहां स्नान करता है तो भगवान हरि को बड़े प्रिय बनता है, भगवान उसको अपने प्रिय गणों के मध्य में अंतर्भुक्त कर लेते हैं। तो चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आप जानना चाहिए किस लिए स्नान करते। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप बीच में जाकर कहीं, में ढूंढा कहीं नहीं कहा गया कि ठीक 12 बजे जाके स्नान करना उधर, ऐसा कहीं नहीं। ये सिस्टम जो आज चल रहा है रात को 12 बजे जाके स्नान करने का, ये 50 साल से शुरू हो रहा है, शुरू हुआ है। यदि पुरखे बाबा जी लोग से भी इंक्वायरी करोगे, बस ये 40-50 साल के अंदर ही शुरू हुआ कि बीच में जाकर अर्धरात्रि में जाके स्नान करना है। ये कहा है कि कार्तिक बहुलाष्टम्यं तत्र स्नात्वा हरे प्रिय, कार्तिक महीना की बहुलाष्टमी के दिन, कृष्ण अष्टमी के दिन, अष्टमी तिथि में यदि कोई जो स्नान करता है तो उसको भगवान हरि के चरण में भक्ति प्राप्त होता है, हरि को प्रिय बन जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशयि नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कक्षा के प्रारंभ में हम राधा कुंड की महिमा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और बाद में इसके प्राकट्य कैसे प्रकट हुआ। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव दर्शन में सर्वश्रेष्ठ भगवान की प्रिय स्थान वो है कौन सा? राधा कुंड। चाहे अन्य संप्रदाय के लोग इसको स्वीकार करें ना करें, वो अपने वात्सल्य भाव में जो रहते हैं पुष्टि मार्ग के लोगों को कहते गोकुल श्रेष्ठ है, माँ जसोदा की प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं बा हाँ। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की है साधारणतः हमें कहते हमें जो कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है बा जो रूप गोस्वामी की शिक्षा को मान युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को जो स्वीकार करते हैं, रूप गोस्वामी के उपदेशामृत को जो स्वीकार करते हैं, तो फिर हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय स्थान है कौन सा? राधा कुंड। उपदेशामृत के अंतिम तीनों श्लोक इसी के बारे में चर्चा की गई है, राधा कुंड की महिमा की चर्चा की गई है। 9 श्लोक में रूप गोस्वामी कहते कि वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदार पाणी रमणात् तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः। कहते कि वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी, मधुपुरी किसको कहते? मथुरा। ऐसा ही था हम कहते कि भौतिक जगत से भौतिक ब्रह्मांड को यहाँ पर जन्ममुक्ति जरा व्याधि के संसार को त्याग कर सभी कहाँ जाना चाहते लोग? वैकुंठ जाना चाहते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी कहना कि वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है कौन सा? मथुरा, जहाँ पर भगवान ने जन्म लिए हैं। इस लीलाओं को यहाँ प्रकट करने के लिए धरा पर जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया इसलिए वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तत्रापि रासोत्सवात्, इससे श्रेष्ठ है, मथुरा से श्रेष्ठ है जहाँ भगवान ने अपने रास लीलाओं को रचाई, गोपियों के साथ में अंतरंग लीलाओं को जो रचना की है। ये 12 वन में विशेष रूप में वृंदावन भगवान को अति प्रिय, जहाँ भगवान ने शरत ऋतु में जमुना के किनारे बंशीवट में बांसुरी बजाकर गोपियों को आकर्षित कराया करके उनके साथ नृत्य किए, बा वसंत रास में उन्होंने गोवर्धन के तलहटी में चंद्र सरोवर के आसपास में वहाँ पर वसंत रास को रचा है, जिसको जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में रचना करते हैं। गीत गोविंद में जो रास की वर्णन होती है वो वसंत रास है, शरत रास की वर्णन भागवत में की गई है। तो इसी प्रकार कैसे कि रासोत्सव रास जहाँ पर भगवान ने रचा है ये वृंदावन की जंगल वृंदावन विशेष रूप में उनसे इससे भी श्रेष्ठ है, मथुरा से श्रेष्ठ है। लेकिन वृंदारण्यंग मुदार पाणी तत्रापि गोवर्धन, ये 12 वन और वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि भगवान ने इस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में ही छत्री के समान धारण करके रखा। कितना दिन? 7 दिन 7 रात। भगवान ने जैसे ही बाएं हाथ के छोटा सा ये अंगुली में अग्रभाग में धारण किए इतनी बड़े विशाल पर्वत को, लोगों को विश्वास ही नहीं होते, नास्तिक लोगों को कहाँ से विश्वास होगा। लेकिन भगवान जानते हैं, सभी लोग जानते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों की बात में विश्वास है। भगवान ने गिरिराज को धारण किए और सारे ब्रजवासियों को रक्षा किए। तो ये लीला में ही ये क्योंकि गोवर्धन को भगवान ने स्वयं अपने हाथ में धारण करके ही छत्री के समान ब्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान की, गाय को और भक्तों को सुरक्षा प्रदान की, इसलिए ये गोवर्धन इनसे भी श्रेष्ठ है, ये 12 वनों में से वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। यदि वृंदावन में ही गोवर्धन है, हाँ वृंदावन कहाँ से है, यमुना के किनारे से लेकर पूरी नंदगांव तक ये सारे वृंदावन में ही है, हैं नंदगांव जितनी भी अंतरंग लीला स्थली भगवान के सभी वृंदावन में ही है यहाँ से। लेकिन इससे भी गोवर्धन श्रेष्ठ है। लेकिन आगे कहते कृप गोस्वामी, राधा कुंड मिवापी गोकुल पते प्रेमामृत प्लावनात् कुर्ज्याद विराजत गिरि तटे सेवांग विवेकी न कह। ये राधा कुंड इससे भी श्रेष्ठ है, हैं राधा कुंड जो है तो ये गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। राधा कुंड श्याम कुंड खाली ऐसे पानी का कुंड नहीं है, हैं ये राधा और कृष्ण की ही प्रेम का ही माने भगवान के प्रेम का ही क्या रस, प्रेम रस में ही पूर्ण है। और कृष्ण ही स्वयं माने राधा और कृष्ण स्वयं पिघल गए हैं किस रूप में, पानी रूप में। ऐसे आध्यात्मिक जगत में राधा कुंड श्याम कुंड की गोलोक वृंदावन में सृष्टि हुई थी। राधा सारे वर्णन करने टाइम पर समाप्त करने के लिए भी मुझे कहा गया क्लास है, तो इसलिए राधा राधा कुंड श्याम कुंड आध्यात्मिक जगत में ये राधा कृष्ण का ही स्वयं परस्पर के प्रेम में पूरे मिल गए जो, तो उसी उनके ही ये रस स्वरूप माना जाता है, उनके शरीर वो वही स्वयं ही पानी के रूप में परिवर्तित हुए हैं। इसलिए ये राधा कृष्ण के प्रेम में आप्लावित रहता है। तब भला कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत के पादमूल पर स्थित इस दैवी राधा कुंड का सेवन नहीं करेगा। तो आप सब जाएगी फिर राधा कुंड में ही रहना चाहिए, हैं रूप गोस्वामी कहते ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो राधा कुंड के किनारे रहकर राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहेगा, हैं कि राधा कुंड भगवान के सबसे प्रिय स्थान है। यदि कोई राधा कुंड के अंतरंग के लीला में प्रवेश करना चाहता तो राधा कुंड में रहकर राधा राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ भगवान की पूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला हुआ है और यह अत्यंत पूज्य क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत से भी श्रेष्ठ है। भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं, जैसे हम कहे सारे। लेकिन तो इसलिए वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है, वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ है, गोवर्धन से राधाकुंड श्रेष्ठ है। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में कहा गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे राधा कुंड कहीं ढूंढ कर रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में पधारे थे, विश्राम घाट में स्नान करके ही वो ब्रजमंडल परिक्रमा, जिस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज को भ्रमण किया था, आज भी हमारा ब्रजमंडल परिक्रमा उसी रीति में हम भ्रमण करते हैं। विश्राम घाट से मधुबन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, फिर आके वृंदावन में प्रवेश करते हैं। राधा कुंड आ जाते तो वृंदावन आ गए हैं। तो इसलिए कहते कि राधा कुंड की स्थिति का पता नहीं लगा पाए महाप्रभु ने जो पधारे, नृत्य करते करते महाप्रभु बड़े भाव में भी होकर भ्रमण करते थे ब्रजमंडल में। लेकिन जब विशेष रूप में भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंच गए, उस गांव का नाम था अरिष्टग्राम। पहले तो महाप्रभु ने आगे समझ गए कि मैं आ गए स्थान तो ये तो राधा कुंड के स्थान है। लोगों को पूछे भाई राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, जहाँ पता है आप लोग को? किसी को भी पता नहीं था। कितने पुरुखे ब्रजवासी सब थे, कितने साधु संत, सभी को पूछे लेकिन कोई बता नहीं पाया है। चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की वास्तविक स्थिति की खोज में थे, तो कोई ने जब नहीं बता पाया, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं ही भगवान थे, स्वयं कृष्ण ही थे, उनको सारी पता था। तो उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड में ऐसे उन्होंने गांव में कहे कि ये गांव के नाम क्या है, लोग बोले कि गांव के नाम ओरिटोग्राम, क्या कहे? ओरिटोग्राम, क्योंकि ये गांव में अरिष्टासुर का वध हुआ था है? अरिष्टासुर के वध के साथ राधा कुंड श्याम कुंड का उत्पन्न का कहानी जुड़ा हुआ है, है? इसलिए जब लोग कहे कि ये अरिष्टग्राम है तभी महाप्रभु को विश्वास हुआ, समझ गए ये अरिष्टग्राम अरिष्टग्राम है, यहीं पर अरिष्टासुर को भगवान श्री कृष्ण वध किए थे। अरिष्टासुर को वध करने के बाद ही हाँ गोपियां लोग ने इंतजाम लगाया कि आप ये गाय को बनने के सॉरी ये बैल को मार डाले हो, गो हत्या पाप लगा, हमको स्पर्श नहीं करना है। तो इसलिए महाप्रभु को पता लगा कि ये ही राधा कुंड श्याम कुंड की, लेकिन ये ढूंढने लगे कहाँ है राधा कुंड श्याम कुंड। तो घूमते घूमते देखे कि दो धान की खेती है, उस खेती में थोड़ा पानी जमा हुआ है, पानी ऐसे ही घुंटन तक पानी ऐसे तो है पानी। तो लोगों को पूछे भाई ये जो दोनों खेती देख रहे हैं ये क्या है? वो बोलते कि लोग कहे कि ये काली है वो गोरी है, हैं? कहते धान खेती का नाम क्या है? काली और गोरी। तो महाप्रभु ने हंसने लगे, तो समझ गए कि ये जो लोग जिसको गोरी कहते हैं वही है राधा कुंड, जिसको काली कहते हैं ये श्याम कुंड है। इसलिए महाप्रभु ने तुरंत उसी राधा कुंड के जल में उतारे हैं। जथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंड प्रियंग तथा सर्व गोपीसु सबैका विष्णु अत्यंत वल्लभा, पद्म पुराण के श्लोक गाने लगे महाप्रभु ने, है कहे कि जैसे राधा रानी भगवान विष्णु व श्री कृष्ण को प्रिय है उसी प्रकार उनकी कुंड भी इतना ही प्रिय है, जितने राधा रानी कृष्ण को प्रिय इतना भी प्रिय ये कुंड है, राधा कुंड भी इसी प्रकार भगवान को अति प्रिय है। कृष्णदास कविराज के गोस्वामी कहते कि कुंडेर महिमा जेनो राधार महिमा, ये कुंड का महिमा कैसे है ना, राधा रानी की महिमा जैसे है राधा कुंड की महिमा भी ऐसा ही है, ये राधा रानी से अभिन्न है। राधार महिमा जेनो कुंडेर माधुरीमा, बा कुंडेर महिमा जैसे ही राधा रानी की माधुरीमा है लीलाओं की, इसी प्रकार ये राधा कुंड का भी इस प्रकार ये भी मधुर लीलाओं को संपन्न करने में राधा कृष्ण की सहायता की है। इसलिए राधा रानी से राधा कुंड अभिन्न, ऐसे जो कहकर महाप्रभु ने स्नान करने लगे ब्रजवासी लोगों ने देखने लगे क्या हुआ ये सन्यासी तो इतनी दिख रहा है इतनी सुंदर है, लग रहा है कि ये तो स्वयं कृष्ण ही है, केवल शरीर कांति का ये कलर का अलग दिख रहा, क्योंकि महाप्रभु जहां भ्रमण करते थे पशु पक्षी सब आकर है उनके पास में आ जाते थे, हिरण सब पास में आ जाते उनके शरीर में घिसते थे, गाय भी सब ऐसा ही देखते थे, जैसे सोचते थे कि 5000 साल पहले जिन मित्रों उनको वो देखे थे वो किनको कृष्ण को, ये लग रही वही मित्र फिर दोबारा आ गए, दूर दूर से गाय गाय से भाग भाग के आते थे कहाँ महाप्रभु के पास, वहां जो चराने वाले इनको हांकने में बड़ा दिक्कत होता था, रुक नहीं पाते, भागते थे गाय है महाप्रभु के पास आ जाते थे, हिरण भी आकर उनके पास, तोता तोता तो अपने आप उड़ के आकर उनके हाथ में बढ़ जाते थे, एक तोता राधा राधा रानी की गुणगान कर, तो जो सारिका है वो राधा रानी गुणगान करती थी, और जो सुख है सुख सारी सुख पक्षी क्या बोलता था, कृष्ण ही गुणगान करता था। ये सुख लीला को देखकर ब्रजवासी लोग भी आश्चर्यचकित हो रहे कैसा है, हम कोई जाएंगे अपने आप तोता आगे बैठेगा हमारे हाथ में, नहीं बैठने वाला, पशु देखे भाग जाएंगे सुख हमसे, लेकिन महाप्रभु के पास में सुख आते थे। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु ने आकर ही ये पहला जो ब्रजभूमि में आकर सबसे पहला जो आविष्कार किए जो स्थान वो है राधा कुंड और श्याम कुंड। इसलिए ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सबसे श्रेष्ठ स्थान माना जाता है, ये राधा कृष्ण के सबसे प्रिय स्थल ही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि बरसाना नंदगांव के बीच में बीच के स्थान भी बड़े स्थल ऐसे बड़े पवित्र माना जाता है, लोग कहते वृंदावन भी यहाँ आते हैं रास जहाँ भगवान ने रचाए हैं, लेकिन इन सभी से वो श्रेष्ठ है, क्योंकि गोकुल में तो वात्सल्य भाव का ही विशेष प्राधान्यता है, नंदगांव बरसाना के बीच में भी यदि वो राधा कृष्ण की मधुर्य लीलाओं की समागम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर साक्ष्य मिश्रित माधुर्य, वहाँ पर शुद्ध माधुर्य नहीं है, साख्य साथ में सखाओं के साथ भी भगवान जाते थे आते थे, सखा राधा कुंड की लड़ा में सखाओं की कोई स्थान नहीं है, वहाँ सखा लोग भी कृष्ण के साथ जाते थे, दूतमन की कभी सुवर्ण कभी साए ये सब जाबट और नंदगांव ये सब एरिया में साख्य मिश्रित माधुर्य है, लेकिन जब ये वृंदावन में भी महारास भगवान रचा है, लेकिन महारास में भी राधा रानी बड़े नाराज थी, नाराज हो गई, क्योंकि देखिए कि जितना कृष्ण इतना गोपी, तो राधा रानी का क्या प्राधान्य रहा। राधा रानी ने इसलिए रासलीला को छोड़कर एक मानसरोवर में मानिनी बन गई थी, वहां बैठ के रोने लगी है, तो भगवान को जाना पड़ा उनके मान भंजन करने के लिए, इसलिए तो उनके आंख के असुर में वो मानसरोवर बना है। ये महारास में भी इतनी राधा रानी को इतनी खुश प्रसन्न नहीं थी है, लेकिन जो राधा कुंड में है, जो भगवान राधा कृष्ण के साथ जो अंतरंग लीलाएं हैं, उसमें केवल राधा रानी की ग्रुप के ही जो गोपियां उनकी ही स्थान है, दूसरे किसी का स्थान नहीं। राधा रानी व उनके अंतरंग ललिता विशाखा आदि राधा कुंड श्याम कुंड जैसे हैं, ऐसे उनके चारों साइड में भी अष्ट सखियों की भी कुंड था। आज सब लुप्त पा चुका है, केवल ललिता कुंड दिखाई पड़ रहा है, विशाखा कुंड देखे हैं, लेकिन अन्य कुंड नहीं है। लेकिन इसलिए राधा कुंड के जो परिवेश है, वहां पर राधा कृष्ण की विशुद्ध माधुर्य प्रेम का स्थली है। यहीं पर राधा रानी को सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त हुई कृष्ण के साथ लीला में। तो इसलिए लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड की प्राकट्य, जैसे महाप्रभु तो आकर केवल इसको कहे, लेकिन ये क्या उसी समय प्रकट हुआ? नहीं, महाप्रभु 500 साल पहले आके इसको प्राय लुप्त हो गया था, उसको दोबारा केवल निर्देशन किया, ये राधा कुंड ये श्याम कुंड है। लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड के उत्पत्ति इसी भौतिक जगत में, तो ये तो अरिष्टासुर के अर्थात अरिष्टासुर के वध के साथ संबंधित है, जिसको भागवत के ही 10वें स्कंद के 36वें अध्याय में अरिष्टा व वृषभासुर व अरिष्टासुर का वध, इसी अध्याय में ही हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य से इस रहस्य को हमें जानते हैं। यदि इसको पद्म पुराण में भी वर्णन की गई, हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं, लेकिन ये सभी वर्णन सभी का सारांश को लेकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवत के अपने तात्पर्य में इसको लिखते हैं, अपने कमेंट्री में टीका में लिखते हैं, अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णेना अद्भुत कर्मणा कंसाया था हो भगवान नारद देव दर्शन। अद्भुत काम करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। इसी दैव दृष्टि वाले शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। इस श्लोक का तात्पर्य में राधा कुंड की उत्पत्ति बारे में लिख रहे हैं कौन? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये लगभग इसमें उन्होंने 20 श्लोक अन्य अन्य पुराण में कोट करके ही राधा कुंड श्याम कुंड की उत्पत्ति के बारे में, अरिष्टासुर के वध के बाद किसे राधा कुंड श्याम कुंड उत्पन्न हुई है उसको प्रमाणित करते हैं। लेकिन ये तो ये तात्पर्य में ही हम पता लगा सकते हैं कि प्रकृति में अरिष्टासुर तो बहुत बड़े भीषण काय राक्षस था, ये कंस के निर्देशन में आया था। कंस के निर्देशन में आया था किसको वध करने के लिए? कृष्ण बलराम को। तो ये अपने को बहुत बड़े विशाल काय बैल के रूप में आया, इतनी विशाल था कि उसके झुंड जो उसके संड का जो झुंड होता तो वो पूरा कहाँ लगता था? बादल को। बादल सुबह के मंडल रहते सोचते कि इसको पहाड़ समझकर उसका चारों साइड में घूम रहे थे, ऐसे वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते। पहाड़ समझते इसके तो उसका झुंड को बादल सोचते कि पहाड़ है, इसलिए आकर उसके चारों साइड घूमते थे। इतनी विशाल था, इसका पूछ भी पूरा बादल को उस पर ऐसे उठाता था घुस को भी, इतनी विशाल का रूप लेकर ये अरिष्टासुर ने आकर क्या करने लगा? अपने जब पैर में ही पृथ्वी को उखाड़ने लगा, पृथ्वी अपने खुरे से पृथ्वी को क्षत विक्षत करके उसके उससे कंपाने लगा, पृथ्वी पूरा धरती को कंपाने लगा ये। और जब बैल गुस्सा होता कैसा आवाज करता आपको पता है? कैसा आवाज करता है? जोर जोर से श्वास लेता है, मैंने बहुत जोर से आवाज सुनाई पड़ता है, लोग देखने से पता लगता है कि ये गुस्सा है। कौन सा पैर में वो जमीन को खुदाई करता है? तो देखा कोई चैलेंज करता कोई बैल किसके साथ लड़ाई करने? कौन सा पैर में खुदाई करता है? दाएं पैर में या सामने पैर? सामने खुर में कि पीछे खुर में? सामने है। और सिंह में भी मिट्टी को ऐसे थोड़ा सिंह में भी ऐसा ही मिट्टी को उखाड़ता है, है? तो अरिष्टासुर ने जोर से रंभाते हुए धरती को खुरेदा, वो अपनी पूछ उठाए है, अपनी आंख चमकाता रहा सिंह, तभी ऐसे करके उन्होंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मलमूत्र भी त्यागता था, है? देखा है? और ऐसे कह के राजन परीक्षित महाराज को कहते सुखदेव गोस्वामी, ये तीक्ष्ण सिंह वाले अरिष्टासुर के का इस प्रकार स्थिति को देखकर ब्रजवासी लोग भयभीत होने लगे। यहां तक कि निसंदेह उसकी गर्जना की तीव्र गुंज इतना भयावह थी कि भयावह था कि गर्भिणी गांव भी गाय की गर्भपात हो गया, स्त्रियों के भी गर्भपात हो गया, जो गर्भवती स्त्रियां थे वो सब गर्भपात हो गया। इतनी भयंकर गर्जना भी करता था, उसको देखने की बात है, उसकी आवाज सुनकर ही लोग इतनी भयभीत हो गए। तभी भगवान ने देखे कि ये बड़ा कारण आकर ब्रजवासियों को ऐसा क्यों धमकाता है, समझ गए ये मेरे 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 तरफ आ रहा आस्ते आस्ते है। इसलिए घर के पशु थे, चरागाह में थे, ये भी सब उसको देखकर भाग के दूर दूर भाग के चले गए। भगवान ने देखा कि सारा गोकुल भय से भग रहा है, उन्होंने तो सामने आए ब्रजवासियों, डरो मत, मैं हूं जो आप लोग का रक्षक हूं, ब्रजजन भय हारी, ब्रजजन की भय को हरण करने के लिए मैं हूं, तो आप लोग क्यों भाग रहे हो, चिंता मत करो। तब आ गए भगवान सामने, किसके सामने, अरिष्टासुर के, कहकर ए मूर्ख, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम क्या सोचकर ग्वालों को तथा ब्रजवासियों को इतना डरा रहा है, जबकि तुम जैसे दुरात्मा को दंड देने के लिए मैं स्वयं यहां पर तेरे सामने खड़ा हूं। कहकर भगवान ने अपने कमर को थोड़ा बांध लिए, किसमें, करधनी में बांध लिए, कहकर और अपने सखा के एक ग्वाला के कांध में से हाथ देकर मजाक में हंस रहे थे, इसको हंसी उड़ा रहे थे, किसको, वो अरिष्टासुर को, है? अरिष्टासुर ऐसा देखकर तो उसका क्रोध बढ़ गया, है बढ़ गया, तो भगवान ने थोड़े अपने बाहर में और थोड़ा हाथ ठुके, इसको चैलेंज दिए, किसको, तो चैलेंज दिए, तो देखकर उसको बड़ा क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर असुर ने मुंह को नीचे करते हुए पूंछ को खड़ा करके बड़ा जोर से आवाज करके सीधा भगवान को मारने के लिए आया, है? तभी मारने के लिए तो आया था, भगवान ने क्या किया, उसका दो सिंह को पकड़ लिए, है? आया तो भगवान इसके दो सिंह जो बड़े